एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज की ज्ञान गोष्ठी में हम 20वीं सदी के एक बहुत ही जाने माने अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। 4 बार पुलित्जर पुरस्कार मिला जिन्हें, और जिनकी कविताएं पढ़ते ही वो न्यू इंग्लैंड के शांत, बर्फीले या हरे भरे नज़ारे आंखों के सामने आ जाते हैं।
बिल्कुल।
पर सवाल यह है कि क्या उनकी कविताएं सिर्फ प्रकृति के बारे में ही है या कुछ और भी है? तो आज हम उनके जीवन, उनकी कविताओं के पीछे छुपे मतलब और साहित्य पर उनके असर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर।
हाँ, और फ्रॉस्ट का जो समय था, मतलब 1874 से 1963, वो अमेरिका के लिए बड़े बदलावों का उथल पुथल का दौर था।
अच्छा।
हाँ, जैसे सिविल वॉर के बाद का रिकंस्ट्रक्शन, फिर तेजी से औद्योगिकरण बढ़ा, 2 विश्व युद्ध देखे उन्होंने, ग्रेट डिप्रेशन और फिर कोल्ड वॉर की शुरुआत, ये सब कुछ उनके जीवन काल में हुआ।
बापे, काफी कुछ देखा उन्होंने।
बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात जो पता चलती है वो ये कि फ्रॉस्ट, जिन्हें हम न्यू इंग्लैंड का कवि मानते हैं, उनका जन्म असल में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था।
हैं? कैलिफोर्निया? ये बात उनकी उस छवि को थोड़ा अजीब बना देती है ना?
हाँ, वही थोड़ा पेचीदा बना देती है।
तो क्या ये जो तनाव था, मतलब एक तरफ बदलता हुआ शहरी होता अमेरिका और दूसरी तरफ वो पुरानी ग्रामीण परंपराएं, क्या ये चीज उनकी कविताओं में दिखती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये उनकी रचनाओं की जड़ में कहीं ना कहीं है।
बिल्कुल, ये तनाव आप महसूस कर सकते हैं कई कविताओं में। वो उस दौर में लिख रहे थे जिसे साहित्यिक आधुनिकतावाद या मॉडर्निज्म कहते हैं।
हाँ, एलियट और पाउंड वाला दौर।
सही। जब टीएस एलर्ट, एज़रा पाउंड जैसे कवि भाषा और फॉर्म के साथ नए नए प्रयोग कर रहे थे, पुरानी चीजों को तोड़ रहे थे, लेकिन फ्रॉस्ट का रास्ता थोड़ा थोड़ा अलग था।
अलग था। कैसे?
इसीलिए कुछ आलोचकों ने उन्हें कहा भी है, भेस में आधुनिकतावादी, मॉडर्निस्ट इन डिस्गाइज।
भेस में आधुनिकतावादी? वाह, ये तो सुनने में बड़ा रोचक है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो थे तो मॉडर्निस्ट पर दिखते नहीं थे?
हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। उन्होंने भी अपने जमाने की जो आधुनिक चिंताएं थीं, जैसे अकेलापन, ईश्वर में या पुराने मूल्यों में विश्वास का कम होना, जीवन में अर्थ ढूंढने का संघर्ष, इन सबको ही अपनी कविताओं का विषय बनाया।
अच्छा।
लेकिन उन्होंने इसके लिए बहुत मुश्किल या एक्सपेरिमेंटल भाषा यूज नहीं की। उन्होंने क्या किया कि न्यू इंग्लैंड की जो रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा है, वहाँ के लोगों का जो लहजा है और जो जानी पहचानी कविता की लय होती है, मीटर और रिदम, उसका इस्तेमाल किया। तो उनकी कविताएं ऊपर से पढ़ने में सरल लगती हैं, पर आप गहरे उतरें तो कई परतें खुलती हैं, जटिल मतलब निकलते हैं।
समझ गया। तो मतलब लिबास पारंपरिक पर अंदर माल नया या मुश्किल। अच्छा, ये भी पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 1 से ठीक पहले वो कुछ साल इंग्लैंड में भी रहे थे, उस अनुभव का क्या असर पड़ा?
हाँ, वो बहुत अहम दौर था उनके लिए। इंग्लैंड में वो एडवर्ड थॉमस जैसे कुछ जॉर्जियन कवियों के संपर्क में आए, उनकी कविताओं में भी गांव और प्रकृति का जिक्र होता था।
अच्छा।
और वहीं पर एज़रा पाउंड जैसे बड़े मॉडर्निस्ट कवि ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनकी पहली किताब छपवाने में मदद भी की।
अरे वाह, पाउंड ने।
हाँ, हालांकि फ्रॉस्ट ने कभी खुद को किसी एक साहित्यिक गुट या मूवमेंट से पूरी तरह जोड़ा नहीं, वो थोड़े अपनी मर्जी के मालिक थे, अपनी राह पर चलते थे।
और फिर ग्रेट डिप्रेशन और 2 विश्व युद्ध, जाहिर है इन सब बड़ी घटनाओं ने भी उनके लिखने पर असर डाला होगा।
बिल्कुल डाला। इन अनुभवों से उनके काम में वो कठिनाई, संघर्ष और मुश्किल हालात में टिके रहने, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, वो सब विषय और गहरे हो गए।
हाँ।
उनकी कविताएं जो बाहर से कई बार शांत लगती हैं या सिर्फ प्रकृति का वर्णन लगती हैं, उनके नीचे अक्सर एक अंधेरापन, एक उदासी या अस्तित्व से जुड़े सवाल, वो सब छिपे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो 19वीं सदी के औजारों से, मतलब पारंपरिक काव्य रूपों से, 20वीं सदी की जो आध्यात्मिक बीमारियां थीं, जो बेचैनी थी, उसका इलाज या उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हों।
ये बहुत दिलचस्प नज़रिया है। अच्छा, अगर उनके निजी जीवन को देखें तो पता चलता है कि वो भी काफ़ी उतार चढ़ाव और दुख भरी घटनाओं से भरा था। जो उनकी वो सार्वजनिक छवि थी ना, एक शांत, ज्ञानी, किसान कवि वाली, उससे बिल्कुल अलग।
हाँ, ये विरोधाभास बहुत बड़ा है और बहुत दुखद भी। जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उनके पिता की टीबी से मौत हो गई।
ओह।
उसके बाद परिवार कैलिफोर्निया से मैसाचुसेट्स आ गया। उनके पिता पत्रकार थे और उन्होंने ही उनका नाम कन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली के नाम पर रखा था। ये भी थोड़ी अजीब बात लगती है आज।
हाँ बिल्कुल।
खैर, मैसाचुसेट्स में ही न्यू इंग्लैंड के साथ उनका वो गहरा और थोड़ा जटिल रिश्ता शुरू हुआ जो उनकी कविताओं की जान है।
और उनकी पढ़ाई लिखाई भी कुछ मतलब पूरी नहीं हो पाई थी शायद, डार्टमाउथ और हार्वर्ड जैसे बड़े कॉलेजों में गए तो थे।
हाँ गए जरूर, पर डिग्री पूरी नहीं की, औपचारिक शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। कविता लिखने का जुनून तो था, पर पेट पालने के लिए कई तरह के काम करने पड़े।
जैसे
किसान का काम किया, जूतों की फैक्ट्री में मजदूरी की, टीचर भी रहे, और करीब 20 साल तक वो लगभग गुमलामी में ही लिखते रहे, किसी को पता नहीं था ज्यादा।
20 साल, बाप रे।
हाँ, फिर 1895 में एलिनॉर वाइट से उनकी शादी हुई। वो उनके जीवन का एक स्थिर केंद्र बनी, लेकिन इस रिश्ते पर भी बहुत भारी व्यक्तिगत त्रासदियों की छाया पड़ी।
हाँ मैंने पढ़ा है इसके बारे में। बड़ा दुखद है, उनके 6 बच्चे हुए जिनमें से 4 की मौत उनके जीते जी हो गई।
जी, एक बेटे की बचपन में ही हैजे से मौत हो गई, एक बेटे की डिलीवरी के वक्त, एक बेटे ने आत्महत्या कर ली, और एक बेटी को मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सिर्फ 2 बच्चे ही उनसे ज्यादा जिए।
ये सब झेलना, कल्पना करना भी मुश्किल है।
बेहद मुश्किल। और जाहिर है इन त्रासदियों का असर उनके जीवन पर, उनके नजरिए पर, और शायद उनकी कविताओं पर भी रहा होगा। ये सब उनकी उस पब्लिक इमेज से कितना अलग था जो बाद में बनी।
हाँ, फिर 1912 में वो 38 साल के थे तब, वो अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए और ये उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
बिल्कुल।
अच्छा, इंग्लैंड जाना इतना अहम कैसे रहा उनके करियर के लिए?
वहीं पर उनकी पहली 2 किताबें छपी, अ बॉयज विल 1913 में, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 में।
अच्छा, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, इसका जिक्र बार बार आता है।
हाँ, क्योंकि इसी किताब ने उन्हें अटलांटिक के दोनों तरफ पहचान दिलाई, इसने धूम मचा दी थी। तो जब वो 1915 में अमेरिका वापस लौटे तो वो अब एक गुमनाम कवि नहीं थे, वो एक जाने माने साहित्यकार बन चुके थे।
तो इंग्लैंड ने उन्हें वो पहचान दी जिसकी उन्हें तलाश थी, और अमेरिका लौटने के बाद तो फिर वो धीरे धीरे एक राष्ट्रीय हस्ती की तरह हो गए, खासकर 1961 में प्रेसिडेंट कैनेडी के इनॉग्रेशन में जब वो शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी कविता पढ़ी थी।
हाँ, वो बहुत यादगार पल था। हालांकि वहां भी एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी।
क्या हुआ था?
तेज धूप और बर्फ की चमक इतनी ज्यादा थी कि वो कागज पर लिखी अपनी नई कविता डेडिकेशन पढ़ ही नहीं पा रहे थे।
अरे,
तो फिर उन्होंने अपनी याददाश्त से अपनी एक पुरानी कविता द गिफ्ट आउटराइट सुना दी।
वाह, मौके पे संभाल लिया।
हाँ, और इस घटना ने उनकी उस छवि को और पक्का कर दिया, एक अनुभवी ज्ञानी राष्ट्रकवि वाली छवि। लेकिन जैसा कि बाद में लॉरेंस थॉम्पसन की जीवनी से पता चला, ये जो शांत सफेद बालों वाले देहाती से दिखने वाले कवि की इमेज थी, ये काफी हद तक एक सावधानी से बनाया गया मुखौटा था।
अच्छा,
उसके पीछे एक ज्यादा जटिल, ज्यादा महत्वाकांक्षी और कई बार मुश्किल इंसान छिपा था।
ये जानना भी जरूरी है। चलिए अब उनकी कुछ खास रचनाओं और उनमें उठाए गए विषयों पर थोड़ी बात करते हैं। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 का जिक्र तो हुआ ही, जिसने उन्हें असली पहचान दी। इसमें आपने कहा कि नाटकीय एकालाप और संवादों का इस्तेमाल है।
बिल्कुल। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में उन्होंने न्यू इंग्लैंड के जो आम ग्रामीण लोग थे, उनके मन की बातें, उनके रिश्तों की उलझनें, उनके अनकहे दुख तनाव, इन सबको सामने रखा। कविताएं जैसे मेंडिंग वॉल, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन और होम बेरियल, वो इसी में है।
हाँ, ये नाम सुने हैं।
ये कविताएं ऊपर से तो साधारण बातचीत जैसी लगती हैं, पर असल में वो मानवीय अकेलेपन, कम्युनिकेशन गैप्स और रिश्तों के बनने बिगड़ने का गहरा विश्लेषण है। और यहीं पर उन्होंने न्यू इंग्लैंड की जो लोकल बोली थी, जो लय थी, उसे बड़ी खूबी से कविता में ढाला।
और इसी किताब से वो मशहूर लाइन आती है, गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स, अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। हालांकि कविता में शायद उस पर सवाल भी उठाया गया है।
हाँ बिल्कुल, उस पर आएंगे हम। फिर आया माउंटेन इंटरवल 1916, जिसमें उनकी शायद सबसे फेमस कविताओं में से कुछ है।
हाँ, कौन सी?
इसी में द रोड नॉट टेकन और बर्चेज हैं। द रोड नॉट टेकन तो शायद दुनिया की सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली कविताओं में से एक होगी।
सच में? क्यों? उसे तो सब यही समझते हैं कि अपनी अलग राह चुनो, नॉन कन्फर्मिस्ट बनो।
हाँ, आमतौर पर लोग यही मतलब निकालते हैं कि वो व्यक्तिवाद का, अपनी अलग राह चुनने का जश्न है। लेकिन अगर आप कविता को ध्यान से पढ़ें तो वो असल में इस बात पर एक बहुत बारीक टिप्पणी है कि हम कैसे अपने अतीत को देखते हुए अपनी पसंदों को सही ठहराते हैं, कैसे हम अपने जीवन की कहानी को थोड़ा बना संवार कर पेश करते हैं। ये सीधे सीधे व्यक्तिवाद का नारा नहीं है, बल्कि ये आत्म छलावे सेल्फ डिसेप्शन का एक अध्ययन है।
अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। अच्छा, और यहीं पर उन्होंने उस चीज को और निखारा जिसे वो अर्थ की ध्वनि या साउंड ऑफ सेंस कहते थे। ये क्या चीज थी?
अर्थ की ध्वनि, इसका मतलब था कि सिर्फ शब्दों के मतलब से नहीं, बल्कि वाक्यों के उतार चढ़ाव से, उसकी लय से, उसके लहजे से ही अर्थ पैदा करना।
अच्छा, जैसे हम बातचीत में करते हैं।
बिल्कुल, जैसे हम आम बातचीत में आवाज के टोन से ही मतलब समझ जाते हैं, गुस्सा, खुशी, उदासी, वैसा ही असर वो अपनी कविताओं में शब्दों और लय के जरिए लाना चाहते थे। उन्होंने दिखाया कि साधारण बोलचाल की भाषा की लय को भी पारंपरिक कविता के मीटर के साथ कितनी खूबसूरती से मिलाया जा सकता है।
समझ गया। फिर आई न्यू हैम्पशायर 1923, जिसके लिए उन्हें पहला पुलित्ज़र मिला। इसमें भी कुछ बहुत मशहूर कविताएं हैं शायद।
हाँ, इसमें स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग है, जिसकी आखिरी लाइनें तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
हाँ हाँ, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।
वही, ये कविता भी सतह पर तो बस एक शांत बर्फीली शाम का दृश्य लगती है, पर इसमें जीवन की थकान, कहीं गहरे में मौत का आकर्षण और दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ, इसके बीच का एक गहरा तनाव महसूस होता है। फिर बाद के जो समय आए, जैसे अ फर्दर रेंज 1936, अ विटनेस ट्री 1942, उनमें उनकी आवाज और दार्शनिक होती गई, कभी कभी थोड़ी व्यंग्यात्मक भी, और वो अपने समय की जो सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल थी उस पर भी टिप्पणी करने लगे।
तो अगर हम उनके मुख्य योगदान और साहित्यिक विरासत को समेटना चाहें तो सबसे जरूरी बातें क्या होंगे?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा योगदान तो वही है, अर्थ की ध्वनि पर उनकी पकड़। उन्होंने पारंपरिक काव्य रूपों को तोड़ा नहीं, जैसे कई मॉडर्निस्ट कर रहे थे, बल्कि उन्हें आम बोलचाल की लय और मुहावरे से मिलाकर एक नई जान दे दी। उन्होंने साबित किया कि साधारण देहाती भाषा में भी गहरी काव्यात्मकता और मनोवैज्ञानिक जटिलता छुपी हो सकती है। ये एक तरह से 19वीं सदी की औपचारिकता और 20वीं सदी के प्रयोगवाद के बीच एक पुल बनाने जैसा था।
और वो नाटकीय कविता है, उनको भी उन्होंने एक नया जीवन दिया, जैसे होम ब्यूरियल का जिक्र किया आपने, जहाँ एक पति पत्नी के बीच का संवाद एक भयानक मनोवैज्ञानिक नाटक बन जाता है।
बिल्कुल। और एक और बात, उन्होंने चारागाही कविता यानी पैस्टोरल पोएट्री को एक नया रूप दिया। उनकी कविताओं में प्रकृति सिर्फ सुंदर और शांत नहीं है, वो भाग जाने की जगह नहीं है।
अच्छा,
वो एक ऐसी जगह है जहाँ सुंदरता तो है पर साथ में हिंसा भी है, अकेलापन है और अस्तित्व के कठोर सच भी हैं। प्रकृति एक तरह का सिंबॉलिक स्टेज बन जाती है जहाँ इंसान के सबसे बुनियादी संघर्ष सामने आते हैं।
और उनकी विरासत भी थोड़ी दोहरी सी है, जैसा आपने पहले भी कहा था, एक तरफ वो लोकप्रिय कवि जिनकी लाइनें सब कोट करते हैं, दूसरी तरफ आलोचक उनके काम के अंधेरे कोनों, अस्तित्व के डर और उलझनों पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
हाँ, और शायद यही जटिलता ही उनकी ताकत है जो आज भी बनी हुई है। उनका काम कई लेवल्स पर पढ़ा जा सकता है, इसी वजह से सीमस हीनी जैसे बाद के कवियों पर भी उनका गहरा असर पड़ा। और जाहिर है, चार पुलित्ज़र पुरस्कार मिलना, अमेरिकी कांग्रेस का गोल्ड मेडल मिलना, ये सब उनके साहित्यिक कद को तो दिखाता ही है।
उनकी कुछ लाइनें तो इतनी मशहूर हो गई हैं कि मुहावरों की तरह इस्तेमाल होती हैं। चलिए कुछ ऐसे कोट्स देखते हैं उनके हिंदी अनुवाद और सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। पहला द रोड नॉट टेकन से, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस।
एक जंगल में दो राहें अलग हुई और मैंने वो चुनी जिस पर कम चला गया था और उसी से सारा फर्क पड़ा है। इसका कॉन्टेक्स्ट तो हमने अभी बात की कि ये शायद अपनी पसंद को बाद में ग्लोरीफाई करने के बारे में ज्यादा है।
बिल्कुल। दूसरा मेंडिंग वॉल से, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स,
अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये लाइन फ्रॉस्ट खुद नहीं कह रहे।
अच्छा,
ये कविता में उनका जो पड़ोसी है वो कह रहा है, जो थोड़ा पुरानी सोच का परंपराओं से बंधा हुआ है। कविता का जो मुख्य वक्ता है वो तो इस बात पर सवाल उठा रहा है कि क्या सच में इन दीवारों की जरूरत है, तो ये लाइन अलगाव और जुड़ाव के बीच का जो द्वंद्व है उसे बिखाती है। ये सीधे सीधे दीवार बनाने की वकालत नहीं है।
ये जानना बहुत जरूरी है कि कहे कौन रहा है। तीसरा द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन से, Home is the place where when you have to go there, they have to take you in.
घर वो जगह है जहां जब तुम्हें जाना ही पड़े उन्हें तुम्हें अंदर लेना ही पड़ता है। ये घर की कोई बहुत रोमांटिक भावुक परिभाषा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि एक यथार्थवादी, थोड़ी कठोर पर शायद गहरी मानवीय परिभाषा है, दायित्व की, अपनेपन की।
हाँ, और चौथा स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की वो मशहूर आखिरी लाइन है, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।
लेकिन मुझे वादे निभाने हैं और सोने से पहले मीलों चलना है। ये पंक्तियां तो कविता के कॉन्टेक्स्ट से भी कहीं आगे निकल गई हैं। ये जीवन के जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और दूसरी तरफ मौत या आराम की जो गहरी इच्छा होती है उसके बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक बन गई हैं। इनकी गूंज बहुत गहरी है।
सच में? अच्छा, उनकी कविताओं पर आधारित फिल्में या नाटक वगैरह क्या ज्यादा बने हैं, क्या पता चलता है इस बारे में?
पता चलता है कि सीधा नाटकीय या सैन्य रूपांतरण कम ही हुआ है, शायद इसलिए कि उनकी कविताओं की असली ताकत उनके शब्दों के कंसेंशन में है, उनकी ध्वनि में, लय में, और जो मनोवैज्ञानिक बारीकियां हैं उसे पर्दे पर उतारना शायद मुश्किल काम है। हाँ, उनकी कविताओं पर आधारित संगीत जरूर बना है, जैसे एक रैंडल थॉम्सन का काम है फ्रॉस्टियाना, सेवन कंट्री सॉन्ग्स, और जैसा हमने कहा उनकी लाइनें तो कल्चरल कोड बनी चुकी हैं।
और कुछ और रोचक बातें? हमने उनके सैन फ्रांसिस्को जन्म का जिक्र किया, रॉबर्ट ईली वाले नाम का, कैनेडी के इनॉग्रेशन वाली घटना का।
हाँ, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात शायद वही है, उनकी वो सौम्य देहाती सी दिखने वाली सार्वजनिक छवि और उनके निजी जीवन के गहरे संघर्ष, त्रासदियां और महत्वाकांक्षाएं, इनके बीच का भारी अंतर। ये हमें याद दिलाता है कि महान कला अक्सर बहुत गहरे व्यक्तिगत तूफानों से निकल कर आती है, और जो पब्लिक परसोना होता है वो हमेशा पूरी कहानी नहीं कहता।
बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक कलाकार को उसके काम से जाने या उसके जीवन से या दोनों के बीच का रिश्ता कैसे समझे।
तो अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं लिसनर्स के लिए। जिस तरह फ्रॉस्ट ने रोजमर्रा की सरल, ग्रामीण सी लगने वाली भाषा का इस्तेमाल करके जीवन के जटिल, अक्सर अंधेरे और सार्वभौमिक सत्यों को खोजा और कहा, वह इस बारे में हमारी सोच को कैसे चुनौती देता है कि गहरी अंतर्दृष्टि या महान विचार कहाँ मिल सकते हैं।
अच्छा सवाल है।
क्या वो केवल अकादमिक बहसों या मुश्किल भाषा में ही मिलते हैं, या फिर वे आम लोगों की जिंदगी में, उनकी साधारण बातचीत में, प्रकृति के शांत दिखने वाले दृश्यों में, इनमें भी छिपे हो सकते हैं? फ्रॉस्ट का काम शायद हमें रोजमर्रा की चीजों को ज्यादा ध्यान से देखने और सुनने के लिए कहता है।
बहुत खूब, ये वाकई सोचने लायक बात है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।